सुजीत कुमार की आवाज में वाकटक राजवंश की रिकॉर्डिंग होने जा रही है। तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। इस यशस्वी राजवंश ने मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के ऊपरी भाग में शासन किया और यह मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन था। इस राजवंश के लोग विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार में था। इतिहास के साधन। वाकटक इतिहास के अध्ययन के लिए हम साहित्य तथा अभिलेख दोनों का उपयोग करते हैं। साहित्य के अंतर्गत पुराणों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें अन्य राजवंशों के साथ साथ वाकटक वंश का भी उल्लेख हुआ है। पॉजिटर ने पुराणों में उल्लिखित सामग्रियों का संकलन किया है। पुराणों में इस वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम का प्रवीर नाम से उल्लेख हुआ है तथा उसकी शासन अवधि 60 वर्षों की बताई गई है। पुराणों से पता लगता है कि उसने 4 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वाकटक वंश के अनेक लेख तथा दानपत्र प्रकाश में आ चुके हैं जिनके अध्ययन से हम इस वंश के इतिहास का ज्ञान करते हैं। प्रमुख लेखों का विवरण इस प्रकार है। पहला प्रभाती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, दूसरा प्रवरसेन द्वितीय कालीन रिद्धपुर ताम्रपत्र, तीसरा प्रवरसेन द्वितीय की चमक प्रशस्ति, चौथा हरिसेन का अजंता गुहाभिलेख। पूना तथा रिद्धपुर के ताम्रपत्रों से वाकटक गुप्त संबंधों पर भी प्रकाश पड़ता है। इनसे प्रभावती गुप्ता के व्यक्तित्व तथा कार्यों के विषय में भी जानकारी मिलती है। अजंता गुहालेख इस वंश के शासकों की राजनैतिक उपलब्धियों का विवरण देता है। इससे पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अजंता अभिलेख में उसे वंश केतु कहा गया है। उसने अपने पैतृक राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया।
विंध्य शक्ति वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अजंता अभिलेख में उसे वंश केतु कहा गया है। उसने अपने पैतृक राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया। अल्तेकर का अनुमान है कि विंध्य शक्ति उसका मौलिक नाम न होकर विरुद्ध था और विंध्य क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लेने के बाद उसने यह उपाधि ग्रहण की होगी। पुराण उसे विदिशा का शासक बताते हैं। अजंता के लेख में विंध्य शक्ति की प्रशंसा इस प्रकार मिलती है। उसने महान युद्धों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। दूसरा उसके क्रोध को देवता भी नहीं रोक सकते थे। तीसरा वह इंद्र के समान प्रभाव वाला था। चौथा उसने अपनी भुजाओं के बल से समस्त लोकों की विजय की थी। किंतु उपयुक्त विवरण मात्र आलंकारिक प्रतीत होता है। विंध्य शक्ति ने कोई राजकीय उपाधि ग्रहण नहीं की तथा संभवतः उसका विधिवत राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था। विंध्य शक्ति ने लगभग 275 ईस्वी तक शासन किया। अब प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सूचित होती है। वह एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्य को सभी दिशाओं में विस्तृत किया। पुराणों से पता लगता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अल्तेकर का अनुमान है कि उसने प्रत्येक यज्ञ एक सैनिक अभियान की समाप्ति कर किया होगा। प्रथम अभियान में उसने मध्य प्रांत में पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग को जीता। द्वितीय सैनिक अभियान दक्षिण में हुआ जिसमें उसने दक्षिणी बरार तथा उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश को जीत लिया। अपने शेष अभियानों में प्रवरसेन ने गुजरात तथा काठियावाड़ के शकों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी। इस प्रकार उसके समय में वाकटक राज्य का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा बरार मालवा तथा उत्तरी महाराष्ट्र उत्तरी हैदराबाद और दक्षिणी कौशल के कुछ भागों छत्तीसगढ़ तक हो गया था। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप प्रवरसेन ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया। सातवाहन साम्राज्य के विघटन के पश्चात प्रवरसेन पहला शासक था जिसने दक्षिण को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया जो शक्ति तथा साधन में अपने समय के किसी भी भारतीय राज्य से बड़ा था। अपनी उपलब्धियों द्वारा उसने सम्राट की उपाधि को सार्थक कर दिया। केपी जायसवाल जैसे विद्वान प्रवरसेन को संपूर्ण उत्तरी भारत का एक छत्र शासक बताते हैं, किंतु इस प्रकार का निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं लगता। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध तथा 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। निसंदेह उसका शासनकाल वाकाटक शक्ति के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे जो उसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों के राज्यपाल बनाए गए थे। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उसका ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र उसी के काल में मर गया तथा दूसरे पुत्र सर्वसेन ने बासिम में एक दूसरी शाखा की स्थापना की जिसने लगभग 525 ईस्वी तक राज्य किया। उसके अन्य 2 पुत्रों के नाम अज्ञात हैं। इस प्रकार प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासिम शाखा यानी कि वत्स गुल्म शाखा। अब दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन करने लगी। इनका विवरण इस प्रकार है। प्रधान शाखा रुद्रसेन प्रथम वाकाटक कुल की प्रधान शाखा का पहला शासक प्रवरसेन प्रथम का पौत्र तथा गौतमी पुत्र का पुत्र रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी हुआ। वह पद्मावती यानी ग्वालियर के भारसीव नाग शासक भगवान की कन्या से उत्पन्न हुआ था। अपने नाना भवनाग की सहायता से उसने अपने 2 विरोधी चाचाओं को जीत लिया, परंतु सर्वसेन को वह पराजित नहीं कर सका। वह एक निर्बल शासक था जिसके काल में वाकाटकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ। कुछ विद्वान रुद्रसेन की पहचान प्रयाग प्रशस्ति के रुद्रदेव से करते हैं जिसे समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के युद्ध में उन्मूलित किया था, किंतु ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है क्योंकि रुद्रदेव उत्तर भारत का शासक था जबकि रुद्रसेन दक्षिण का राजा था। रुद्रसेन भगवान शिव का अन्य भक्त था, संभव है अपने नाना भवनाग के प्रभाव से ही शैव हो गया हो। वाकाटक अभिलेखों में उसे महाभैरव का उपासक बताया गया है। उसके नाम के पूर्व सम्राट की उपाधि नहीं मिलती। अलतेकर के अनुसार यह इस बात का सूचक है कि उसने वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया था। पृथ्वीसेन प्रथम रुद्रसेन प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम 360 से 385 ईस्वी हुआ। उसका शासन शांति और समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था। वह भी शिव का भक्त था। पृथ्वीसेन प्रथम के समय में बासिम शाखा में विंध्य सेन शासन कर रहा था। इस समय तक दोनों कुलों के संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए थे तथा बासिम शाखा के लोग मुख्य शाखा की अधीनता नाम मात्र के लिए स्वीकार करते थे। विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। कुंतल का प्रदेश इस समय कदंब वंश के शासन में था और वहां का शासक संभवतः कंग वर्मन था। इस विजय से दक्षिण महाराष्ट्र के ऊपर वाकाटकों का अधिकार हो गया। नचना तथा गंज यानी बघेलखंड क्षेत्र से व्याघ्र देव नामक किसी शासक के 2 अभिलेख मिलते हैं जिनमें वह अपने को महाराज पृथ्वी सेन का सामंत कहता है। यह शासक पृथ्वी सेन प्रथम ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उसके समय में वाकाटकों का प्रभाव क्षेत्र बघेलखंड में फैला था। इस प्रकार पृथ्वी सेन के समय में वाकाटक वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा दोनों ही बढ़ गई। इस समय उत्तर भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। उसे गुजरात और काठियावाड़ के शकों की विजय करनी थी। यह कार्य तब तक संभव नहीं था जब तक कि वाकाटकों का सहयोग उसे मिल न जाता। अतः उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। यह वैवाहिक संबंध दोनों राजवंशों के लिए लाभकारी रहा। विवाह के लगभग 5 वर्षों बाद पृथ्वीसेन प्रथम की मृत्यु हो गई। रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 ईस्वी पृथ्वीसेन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय गद्दी पर बैठा। इस समय से वाकाटकों पर गुप्तों का प्रभाव बढ़ा। रुद्रसेन द्वितीय ने अपने श्वशुर चंद्रगुप्त के प्रभाव में आकर अपने कुलागत शैव धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म अपना लिया जो चंद्रगुप्त का धर्म था। दुर्भाग्यवश लगभग 30 वर्ष की अल्पायु में ही रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। इस समय उसके दो पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अभ्यस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता वाकटक राज्य की संरक्षिका बनी। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। यद्यपि प्रभावती गुप्ता अल्पायु तथा अनुभवहीन थी, तथापि उसने वाकटक राज्य का संचालन बड़ी कुशलता से किया। प्रशासन के कार्यों में उसे अपने अनुभवी पिता से अवश्य ही पर्याप्त सहायता मिली होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए अपने राज्य के योग्य तथा अनुभवी मंत्रियों को भेजा। बासिम शाखा में इस समय विंध्य शक्ति द्वितीय का शासन था। उसने प्रभावती गुप्ता का कोई विरोध नहीं किया तथा इस समय भी दोनों शाखाओं के संबंध मधुर बने रहे। इसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और काठियावाड़ के शक राज्य पर चढ़ाई की और अपने पिता के इस अभियान में प्रभावती गुप्ता ने सेना तथा धन दोनों से मदद किया। संभव है वाकटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने ही शकों का उन्मूलन किया हो। प्रभावती गुप्ता के समय में वाकटकों पर चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव अत्यधिक था। यही कारण है कि अपने पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता अपने पति के गोत्र का उल्लेख न करके पिता के गोत्र का उल्लेख करती है। प्रभावती गुप्ता को एक अन्य महान कष्ट भोगना पड़ा। उसके संरक्षण काल में ही उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो गई। अतः 410 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र दामोदर सेन, जो इस समय तक व्यस्त हो चुका था, प्रवर सेन ने द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। अपने पुत्र के शासनकाल में भी कुछ काल तक प्रभावती गुप्ता जीवित रही। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी तथा भगवान विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। पूना तक रिद्धपुर से उसके दान पत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें उसके द्वारा दान किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रभावती गुप्ता प्रवर सेन द्वितीय के शासनकाल में लगभग 25 वर्षों तक जीवित रही तथा उसकी मृत्यु 75 वर्ष की दीर्घायु में हो गई। प्रवर सेन द्वितीय सिंहासन पर बैठने के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। कुछ समय तक उसने अपने नाना चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता प्राप्त की, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसने शासन का स्वतंत्र भार ग्रहण कर लिया। प्रवर सेन द्वितीय के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं, परंतु किसी से भी उसकी सैनिक विजयों की सूचना नहीं मिलती। अतः ऐसा लगता है कि उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। वह साहित्यिक अभिरुचि का शासक था, जिसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राम की लंका विजय का विवरण सुरक्षित है। वह वैष्णव धर्मानुयायी था। अपने शासन के अंत में प्रवर सेन ने प्रवरपुर नामक एक नई राजधानी स्थापित की, जहां उसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन यानी कि रामटेक नागपुर, जो पहले उसकी राजधानी थे, से स्थानांतरित कर दिया। उसके पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कदंब वंश की राजकुमारी अजीत भट्टारिका के साथ संपन्न हुआ था। यह संभवतः कदंब नरेश काकुत्स वर्मन की कन्या थी। उसकी एक कन्या का विवाह गुप्त कुल में हुआ था। कदंबों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से वाकटक वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। प्रवर सेन द्वितीय ने लगभग 440 ईस्वी तक राज्य किया। नरेंद्र सेन प्रवर सेन द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी हुआ। उसके समय में बस्तर के नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने वाकटक राज्य पर आक्रमण किया। नरेंद्र सेन पराजित हुआ तथा भवदत्त वर्मन ने नंदीवर्धन पर अपना अधिकार कर लिया। इससे वाकटकों की शक्ति और एवं प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। परंतु भवदत्त वर्मन की मृत्यु के बाद नरेंद्र सेन ने पुनः अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लिया तथा उसने न केवल नंदीवर्धन पर अधिकार स्थापित किया, अपितु बस्तर राज्य पर भी आक्रमण कर भवदत्त वर्मन के उत्तराधिकारी को पराजित किया। लगता है उसके इस कार्य में कदंब नरेश ने भी सहायता प्रदान की थी। इस प्रकार नरेंद्र सेन ने नलों की शक्ति का विनाश किया। उसके इस कार्य से वाकटकों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। वाकटक लेखों में नरेंद्र सेन को कौशल मेकल तथा मालवा का अधिपति कहा गया है। इन प्रदेशों पर पहले गुप्तों का अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तों की पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठाकर नरेंद्र सेन ने इन प्रदेशों को अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत कर लिया था, परंतु मालवा पर उसका अधिकार अल्पकालिक रहा और स्कंदगुप्त ने पुनः उसे जीत लिया। इस प्रकार नरेंद्र सेन एक योग्य तथा कुशल प्रशासक था। उसने वाकटक वंश की प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार किया तथा नल राज्य के कुछ प्रदेशों को जीतकर वाकटक साम्राज्य का विस्तार भी किया। बासिम शाखा के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। पृथ्वी सेन द्वितीय नरेंद्र सेन के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी वाकटक वंश की प्रधान शाखा का राजा बना। उसके बालाघाट लेख में उसे परम भागवत कहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह वैष्णव था। इसी लेख से पता चलता है कि उसने दो बार वाकटक वंश की विलुप्त लक्ष्मी का पुनरुद्धार किया था, परंतु उसने अपने किन शत्रुओं को पराजित कर ऐसा किया यह ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नल तथा त्रैकुटक दक्षिणी गुजरात वंशी राजाओं के विरुद्ध सफलता प्राप्त की तथा उसके आक्रमणों से अपने राज्य को बचाया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। बासिम शाखा के वाकटक। वाकटक वंश की शाखा की स्थापना 330 ईस्वी के लगभग सम्राट प्रवरसेन प्रथम के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में स्थित था। इसी कारण इस शाखा को वत्सगुल्म अथवा बासिम शाखा कहा जाता है। बासिम से इस शाखा के विंध्य शक्ति द्वितीय का पुत्र का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस शाखा के कुछ शासकों के नाम अजंता की 16वीं गुफा से प्राप्त एक लेख में मिलते हैं। सर्वसेन ने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया और उसके राज्यकाल की घटनाओं के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। सर्वसेन के बाद उसका पुत्र विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी शासक हुआ। उसका शासन पत्र बासिम से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि उसने नांदीकट नादर हैदराबाद क्षेत्र में एक गांव दान में दिया था। उसने कुंतल दक्षिण महाराष्ट्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।
इस प्रकार उसके राज्य में दक्षिणी बरार, उत्तरी हैदराबाद तथा नागर, नासिक, पूना तथा सतारा के जिले सम्मिलित थे। विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय राजा हुआ, जिसने लगभग 12 वर्षों तक राज्य किया। उसकी मृत्यु के समय उसका पुत्र, जिसका नाम अज्ञात है, अवयस्क था। अलतेकर महोदय का विचार है कि उसके समय में मुख्य शाखा के प्रवरसेन ने संरक्षक का कार्य किया। इस समय दोनों शाखाओं का प्रशासन संभवतः संयुक्त रूप से चलाया जाता रहा होगा तथा प्रवरसेन ने अपने भतीजे के वयस्क होने पर उसे राज्य सौंप दिया होगा। इस अज्ञात नाम के शासक का पुत्र देवसेन हुआ, जिसने 455 ईस्वी से 475 ईस्वी के लगभग तक शासन किया। अजंता के लेख में उसके योग्य तथा अनुभवी मंत्री हस्तिभोज का उल्लेख मिलता है। देवसेन के पश्चात हरिसेन शासक हुआ। हरिसेन 475 से 510 ईस्वी वासिम शाखा का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। इसके राज्यारोहण के समय ही मुख्य शाखा के पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु हुई। चूंकि पृथ्वीसेन का कोई पुत्र नहीं था, अतः उस शाखा का शासन भी हरिसेन के हाथों में ही आ गया। अजंता गुहालेख में उसकी विजयों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कुंतल, अवंती, कलिंग, कोसल, त्रिकूट, लाट, आंध्र आदि के शासन उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इससे स्पष्ट है कि उसका राज्य विस्तृत था, जिसमें उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कुंतल तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक का विशाल भूभाग सम्मिलित था। यह साम्राज्य सम्राट प्रवरसेन प्रथम द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य से भी बड़ा था। वस्तुतः कोई भी समकालीन राज्य इतना विस्तृत था तथा शक्तिशाली नहीं था। हरिसेन की मृत्यु के समय वाकटक राज्य अपने प्रभाव, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की चोटी पर पहुंचा हुआ था। हरिसेन वाकटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। उसकी मृत्यु के बाद 550 ईस्वी के लगभग तक वाकटक साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद दक्षिण में उसका स्थान चालुक्यों ने ग्रहण कर लिया। हरिसेन के निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में कर्नाटक के कदंब, उत्तरी महाराष्ट्र के कलचुरी तथा बस्तर के नल शासकों ने वाकटक राज्य के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। चालुक्य नरेशों ने इन सभी शक्तियों को परास्त कर दक्षिण में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार वाकटकों ने मध्य प्रदेश, बरार तथा ऊपरी दक्षिण में लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के शासक विद्या प्रेमी तथा कला और साहित्य के उदार संरक्षक थे। इस वंश के प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंधु की रचना की थी तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने उसके सितबंधु का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। इस वंश के राजाओं ने अश्वमेध, वाजपेय आदि अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनकी उपाधियां परमाहेश्वर तथा परम भागवत की थीं, परंतु वे किसी भी अर्थ में असहिष्णु अथवा प्रतिक्रियावादी नहीं थे। वाकाटक युग में कला कौशल की भी उन्नति हुई। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण इसी युग में हुआ था। इसमें भव्य चित्रकारियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार साहित्य, धर्म और कला के विकास की दृष्टि से भी वाकाटक नरेशों का शासनकाल उल्लेखनीय है। वाकाटक गुप्त संबंध। जिस समय उत्तरी भारत में गुप्त वंश सार्वभौम स्थिति प्राप्त करने में लगा हुआ था, उसी समय दक्षिण पथ की राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वाकाटक वंश का उदय हुआ। वाकाटकों की गणना दक्षिणापथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सबल शक्ति के रूप में की जाती थी। ऊपर बताया जा चुका है कि वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया था। यहाँ दोनों राजवंशों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला जाएगा। वाकाटकों तथा गुप्तों के प्रारंभिक संबंधों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इतिहासकार एस के आयंगर तथा के पी जायसवाल की धारणा है कि दोनों राजवंशों के प्रारंभिक संबंध शत्रुतापूर्ण थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने वाकाटकों के निकट संबंधी पद्मावती के भार शिवनाग शासक नागसेन का उन्मूलन किया था। मध्य भारत के कई भागों में वाकाटकों के सामंत शासन कर रहे थे, जिनका समुद्रगुप्त ने विनाश कर डाला था। ऐसी स्थिति में वाकाटकों का शांत बैठे रहना संभव नहीं था तथा उन्होंने गुप्तों के विरुद्ध अवश्य ही अस्त्र ग्रहण कर किया होगा। प्रवरसेन प्रथम के काल में वाकाटक सार्वभौम स्थिति में था, यही कारण है कि उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। किंतु प्रवरसेन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम सार्वभौम स्थिति से घटकर सामंत स्थिति को प्राप्त हुआ, जैसा कि उसकी महाराज उपाधि से सूचित होता है। गुप्तों के इतिहास के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम ने सामंत स्थिति से ऊपर उठकर सार्वभौम स्थिति को प्राप्त किया तथा महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। अयंगर का विचार है कि उक्त दोनों घटनाएं परस्पर संबंधित थी तथा गुप्तों का उत्कर्ष वस्तुतः वाकाटकों के मूल्य पर ही संभव हुआ था। चंद्रगुप्त ने वाकाटकों को परास्त कर अपनी राजनैतिक स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ कर लिया होगा। जायसवाल कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः वाकाटकों की शक्ति को समुद्रगुप्त ने आघात पहुंचाया, जिससे वे सामंत स्थिति को प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त के पूर्व दो वाकाटकों ने ही गुप्तों को अपने नियंत्रण में रखा था। परवरसेन ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर चंडसेन का उन्मूलन कर दिया। चंडसेन के पुत्र तथा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति का पुनरुद्धार किया। समुद्रगुप्त द्वारा उन्मूलित वाकाटक नरेश रुद्रसेन तथा जिसे प्रयाग प्रशस्ति ने रुद्रदेव कहा, वह कौशाम्बी में राज्य कर रहा था। वहीं पर युद्ध में समुद्रगुप्त ने उनका विनाश किया था। जायसवाल की धारणा है कि इसके पूर्व समुद्रगुप्त भी वाकाटकों का सामंत था, अतः कोई भी इतना शक्तिशाली न हुआ कि वह सम्राट की उपाधि ग्रहण करता। धार्मिक दृष्टि से यह उपाधि केवल वही ग्रहण कर सकता था जिसने वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान किया हो। प्रवरसेन प्रथम ने यह यज्ञ किया था, अतः उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की। इसके विपरीत यह यज्ञ न कर सकने के कारण उसके उत्तराधिकारी इस उपाधि से वंचित रह गए। इस प्रकार मात्र महाराज उपाधि के आधार पर हम उन्हें सामंत शासक सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरा, गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में हम इस बात की समीक्षा कर चुके हैं कि वह कौमुदी महोत्सव ऐतिहासिक रचना नहीं है, अतः इसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। समुद्रगुप्त द्वारा उन्मूलित आर्यावर्त का शासक रुद्रदेव रुद्रसेन नहीं है। रुद्रसेन दक्षिणापथ का राजा था, जबकि रुद्रदेव उत्तर भारत का शासक बनाया गया है। यदि सचमुच ही समुद्रगुप्त वाकाटक नरेश को परास्त करता तो इसका उल्लेख बड़े गर्व के साथ प्रयाग प्रशस्ति में किया गया होता। तीसरा, जायसवाल ने समुद्रगुप्त के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों पर राजा की उपाधि के आधार पर जो यह दिखाया है कि वह वाकाटकों का सामंत शासक था, तर्कसंगत नहीं है। अलतेकर का कहना है कि इन सिक्कों पर स्थानाभाव के कारण महाराजा धीराज जैसी लंबी उपाधि का अंकन न हो सका। पुनश्च हम चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों पर भी उनकी उपाधि केवल महाराज पाते हैं, किंतु इस आधार पर कोई उन्हें सामंत शासक नहीं कहता। चौथा, प्रयाग प्रशस्ति के व्याघ्र राज का समीकरण वाकाटक सामंत व्याघ्रदेव के साथ स्थापित करना संदिग्ध है। व्याघ्रराज विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग का शासक था, जबकि व्याघ्रदेव विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित बघेलखंड में राज्य करता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त के अभियान से वाकटकों को कोई हानि नहीं हुई और न ही समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन प्रथम को पराजित किया। यह सही है कि प्रवरसेन प्रथम के काल में वाकटकों का दक्षिणी कौशल तथा पूर्वी दक्कन के राज्यों पर अधिकार था और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में इन राज्यों को जीता था, किंतु समुद्रगुप्त के विजय के पूर्व ही ये राज्य अपने को वाकटकों की अधीनता से मुक्त कर चुके थे। ऐसा लगता है कि प्रवरसेन के निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। समुद्रगुप्त बड़ा ही दूरदर्शी सम्राट था। उसने वाकटकों की शक्ति तथा उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का अंदाजा लगा लिया और इसी कारण उसके साथ कोई संघर्ष मोल नहीं लिया। वह जिस मार्ग से दक्षिण भारत के अभियान पर गया उसी से वापस भी लौटा और इस प्रकार वाकटकों के साथ उसके संघर्ष में आने का प्रश्न ही नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा वाकटक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में हमें गुप्त वाकटक संबंध के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त एक महान दूरदर्शी सम्राट था। राज्यारोहण के उपरांत उसकी मुख्य समस्या गुजरात तथा काठियावाड़ से शकों के उन्मूलन की थी। वाकटकों का राज्य गुप्त तथा शक राज्यों के बीच में स्थित होने के कारण भौगोलिक दृष्टि अत्यंत महत्व का था। उत्तर की ओर से शक राज्य पर आक्रमण करने वाले किसी भी शासक के लिए उसे जीत पाना तक संभव नहीं था जब तक कि वाकटकों को उसे सक्रिय सहयोग न मिलता। उन्हें युद्ध में जीत सकना एक कठिन कार्य था, अतः चंद्रगुप्त ने उन्हें स्नेह तथा सौहार्द पूर्वक अपने पक्ष में करने का निश्चय किया। हम देख चुके हैं कि इसी उद्देश्य से उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इसके फलस्वरूप दोनों राजवंश एक दूसरे के निकट संबंधी बन गए। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने ही वाकटक राज्य का शासन संभाला। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल लगभग 390 ईस्वी से लेकर 410 ईस्वी तक चलता रहा। यह काल उसकी सहायता पाकर प्रभावती गुप्ता ने बड़ी कुशलता के साथ शासन का संचालन किया। संभवतः उसी के काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और काठियावाड़ा के शक राज्य की विजय की थी तथा इस कार्य में प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता की भरपूर सहायता किया था। उदय नारायण का विचार है कि शक युद्ध के समय रुद्रसेन द्वितीय जीवित था तथा उसने व्यक्तिगत रूप से अपने ससुर की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। इसी युद्ध में लड़ते हुए उसने अपनी प्राण खो दिए थे। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका घनिष्ठ पुत्र दामोदरसेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से वाकटक राजवंश की गद्दी पर आसीन हुआ। उसने 440 ईस्वी तक राज्य किया। उसके 13 दानपत्र मिलते हैं। इन सभी में उसने अपने नाना चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख अत्यंत श्रद्धापूर्वक किया है। उसके दानपत्रों की प्राप्ति स्थानों से पता चलता कि दक्षिणी महाराष्ट्र पर उसका अधिकार था। यह पहले गुप्तों का अधिकार में था। इस प्रकार वाकटकों का अधिकार हो जाने से दोनों राजवंशों में कुछ मनमुटाव पैदा हो गया। 430 ईस्वी के लगभग प्रवरसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन का विवाह किया तथा कदम्ब वंश की कन्या अजीत भट्टारिका के साथ कर दिया। वह संभवतः कदम्ब नरेश का कुछ वर्मा की कन्या थी। उसकी एक कन्या का विवाह गुप्त वंश में भी हुआ। इससे गुप्त तथा वाकटक राजवंश परस्पर निकट आ गए तथा उनका भेदभाव समाप्त हो गया। नरेंद्र सेन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी पृथ्वी सेन हुआ। बालाघाट से उसका लेख मिलता है। उसने 480 ईस्वी के लगभग तक शासन किया। उसके उत्तराधिकारियों के समय के वाकटक गुप्त संबंधों के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसा लगता है कि इस समय तक दोनों राजवंश अपने अपने आंतरिक समस्याओं में काफी उलझ चुके थे तथा इस कारण वे परस्पर उदासीन हो गए। क्रमशः दोनों राजवंशों की शक्ति का ह्रास हो गया।